रात एक क्लास चल रहा था 9 जून 1968 तीसरे पेज के मध्याह्न की बात चल रही थी। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, भारत को भी स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था मामी कम याद करो, ऐसे करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ सुनावे, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको समझाते हैं। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है, क्योंकि बाबा और बाबा के साथ जुड़ा हुआ है वर्षा। इतना निश्चय बच्चों को रहना है, ये है ही मनुष्य से देवता बनने की संस्था। और देवताएं तो होते ही हैं पावन, अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुमने क्या मनमाना बाबा अक्षर सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो अभी बाप समझाते हैं, सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं तो मुझे याद करो, तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुम सतु प्रधान बन जाओगी। मेहनत ही है सतु प्रधान बनने की है। योग के लिए तो सभी कह देते हैं बहुत अच्छा है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानता नहीं है। पावन बनने की बात तुम सुनाते हो तो भी सुनते नहीं है। बाप कहते हैं तुम सभी तमोपदान पतित बन पड़े हो, अभी अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। असल में तुम आत्मा ही मेरे साथ थी, मुझे तुम बुलाते भी हो गॉड फादर आओ, अभी मैं आया हूं, तो मेरे मत पर चलना चाहिए ना। ये है ही पतित से पावन होने की मत। और मैं हूं सर्वशक्तिवान एवं पावन, अभी तुम मेरे को याद करो। इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है, क्योंकि अभी तुम तमोपदान बने हो। अपने धंधे आदि में भी भर रहो, बाल बच्चे आदि भी संभालो, सिर्फ बुद्धि का योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। अगर ये बात नहीं समझी तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हमेशा के लिए हम पवित्र कैसे बने वो बात नहीं समझते। अरे ये देवताएं हमेशा के लिए पवित्र थे ना, तो ये सदाकाल के लिए पवित्र कैसे बने? कैसे बने? जो एवर प्योर है, सदा काल पवित्र है, उसकी याद से पवित्र बने। तो ये बात पहले पहले समझानी है कि किसकी याद से पवित्र बने देवताएं। अभी बाप फिर कहते मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जावेंगे। अगर तुम्हारे पाप मिट जावेंगे तो तुम देवता बन जावेंगे। नंबर वार देवता बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नंबर वार सजा खा देंगे। नौ जून 1968 की वाणी का चौथा दिन। ज्ञान जो सुनते हैं उनका विनाश नहीं होता है, ज्ञान जो नहीं सुनते हैं उनका विनाश होता है। इसका क्या मतलब हुआ? विनाश काहे का होता है? आत्मा का होता है, पांच तत्वों के बने हुए पदार्थों और शरीर का होता है। किसका विनाश होता है? पांच तत्वों से बनी हुई ये दुनिया है, वो दुनिया सारी ही बदल जाएगी। तो बोला जो ज्ञान सुनते हैं उनका विनाश नहीं होता है, ना वो बरकरार बने रहेंगे और बाकी सबका पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े मनुष्य सब का विनाश हो जाता है। परमपिता परमात्मा की वाणी से जिनको प्यार है वो वाणी ही मुक्ति दिलाती है और जीवन मुक्ति भी दिलाती है। बाकी तो पुरुषार्थ करना है कि हम आत्मा हैं। 63 जन्मों का देहधन भरा हुआ है, पक्का हुआ पड़ा है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है हम ज्योति बिंदु आत्मा है। और हम आत्माओं का बाबा तो बहुत मीठा है, उनको हम क्यों नहीं याद करेंगे? बाबा हम तो आप ही शरण में आए हैं, आपका ही बनेंगे और आपका ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं ऐसे सिर्फ शरण में आने से वर्षा थोड़े ही मिल जाएगा। शरण में आना सरेंडर होना ये तो ढेर होते हैं। कितने होते हैं? वारिस बनने के लिए पावन बनना है, योग बल की यात्रा से। देखो बाप को याद करना कोई कठिन बात है क्या? जिससे इतनी प्राप्ति होती है, वर्षा मिलता है बेहद का, जन्म से ही बाबा बाबा कहते आए, और ये बेहद का बाबा तो एक ही है, उनको तो खूब प्यार से याद करना है। इतने प्यार से याद करना है कि और कोई तरफ दृष्टि ही न जावे, दृष्टि नहीं जावेगी तो वृत्ति भी नहीं जावेगी। तो एक ही बात पक्की करनी है कि हरेक को उस एक बाप से ही वर्षा लेना। अभी बाप कहते हैं तुम आत्माएं हो और मेरे बच्चे हो, क्या जीवात्माओं का बाप अलग अलग होता है लेकिन आत्माओं का सिर्फ एक ही बाप है। और आत्मा का भी ज्ञान जब बैठता है तब प्रैक्टिस होती है कि हम आत्मा है। जिनको प्रैक्टिस होती है वो ही मेरे बच्चे हैं। और बच्चों का एक ही बाप है। अगर मेरे बच्चे नहीं तो भला किसके बच्चे हो? इतनी ढेर की ढेर आत्माएं, इन सभी आत्माओं का बाप कौन है? वो एक ही बाप है जो एवर पावन है। इसकी आत्मा पर कभी कट नहीं चढ़ती है। सुप्रीम सोल कहा जाता है। आत्माएं तो पावन से पतित है, फिर पावन होती है। और उन आत्माओं को पावन तो एक ही बाप बनाते हैं। इस बाप को सभी याद करते हैं। यहां आबू में भी सन्यासी लोग आते हैं तो देखो कैसे पतित पावन की धुनी लगाते हैं, ताली बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों ने तो अच्छी रीति समझ लिया है। सिर्फ ताली बजाने की बात नहीं है, तुमने जान लिया है कि ये तो रथ है। गौमुख भी है ना, तो ये माता है ना। वहां तो पहाड़ पर उन्होंने गौमुख बनाए दिए। समझते हैं गौमुख से गंगा निकली। अब है तो ज्ञान गंगा की बात। ज्ञान निकलता ही है ब्रह्मा मुख से। ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है, भक्ति मार्ग में तो मुजहरा कर दिए, जड़ चित्र बनाए दिए हैं। है ये समझ का मार्ग। तो बाप बतलाते हैं तुम भक्ति में कितने बेसमझ बन पड़े। ज्ञान तो समझ का मार्ग है और समझ तो बुद्धि की चीज है। ज्ञान कहा जाता है समझ को। और तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट भी मनुष्य से देवता बनने का है। भगवान वाच है तो भगवान क्या पढ़ावेंगे, क्या बनावेंगे? डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा, वकील वकील बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा, तो भगवान क्या बनावेंगे? भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनावेंगे, परंतु तुम अपन को अपने आप भगवान भगवती कहने लगो, ये तो ला नहीं है। क्या अपने आप अपन को भगवान भगवती कोई कहे, शिवो हम कहे, ब्रह्मास्मि कहे, ये तो ला नहीं कहता, कौन कहे फिर है? दूसरे लोग कहें भले, लेकिन भगवान अपन को कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये ला नहीं है। बल भगवान तो एक ही है, वो आकर के पढ़ाते हैं, इसलिए भारतवासियों ने नाम रख दिया है। जो ऊंचे ऊंचे की भगवान है जो तुमको पढ़ाए रहे हैं, और भगवान की तो महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तो सागर आकर के तुम नदियों में, पोखरों में, सरोवरों में ये गुण रतन, ये शक्तियां भरते हैं, तुम्हारे अंदर ज्ञान भरते हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो। तुम देवता बनेंगे तो देवता ही गुण ही रहेंगे, परंतु वहां सतयुग में तुमको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। यहां तुमको अच्छी रीति समझाया जाता है तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है, बाहर की दुनिया में जाते हो तो फिर भूल जाते हो। यहां बुद्धि में क्यों बैठ जाता है, हैं? बाहर बात बुद्धि में से क्यों खिसक जाती है? क्योंकि यहां बाप सन्मुख बैठा हुआ है, सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। वहां सेंटर्स पर तो तुम भाई भाई बैठ भाइयों को समझावेंगे, डायरेक्ट बाप तो नहीं समझावेंगे, डायरेक्ट तो तुम अभी सुनते हो। इसलिए मधुबनी की महिमा गाई हुई है। क्या मधुबन में मुरलिया बाजे, यहां तुम बच्चे ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, ईश्वर का परिवार है, ईश्वर के सन्मुख बैठे हो। बाहर में तो बगुलों से मिलना जुलना होता है, तुम यहां आते हो तो यहां आने मात्र से ही तुम बाहर की दुनिया का सब कुछ भूल जाते हो। बाहर की दुनिया का तो वायुमंडल ही अलग हो जाता है, यहां तो तुमको कुछ भी याद नहीं रहता। बाप याद आता है, शांति धाम और सुख धाम याद आता है, तो यही पक्का कर दो, हम शांति धाम के वासी हैं। अभी हम बाप से ज्ञान लेकर के सुखधाम में जाने वाले हैं, ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो। और तुम कितने छोटे माइनॉरिटी हो। यहाँ जैसा वायुमंडल तो कहाँ भी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो तुम डायरेक्ट बाप से सुनते हो। तो वायुमंडल ही बदल जाता है। तुम प्रैक्टिकल में निश्चय बुद्धि हो बैठते हो कि बाप हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, और प्रैक्टिकल में है तो यहां तुम आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। जानते हो बाप हमको डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने की खुशी कोई कम खुशी है क्या? और शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए कल्प कल्प पढ़ाते हैं, कितनी खुशी की बात है। ये भी पक्का याद रहे तो ये पढ़ाई पक्की पक्की पढ़नी चाहिए ना। भक्ति मार्ग तो है ही अलग, भक्ति मार्ग में तो अनेक मंदिर अनेक ठिकाने आदि बनाते हैं, उन तीर्थों आदि में कितना भटकना पड़ता है। यहां तो भटकने की कोई बात नहीं, बाप को पहचाना और बुद्धि का भटकना बंद। मां भक्ति मार्ग में तो कितना खर्चा करती है, बाप तो कहते हैं तुम एक कौड़ी का भी खर्चा न करो, सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलो, भले एक पैसा भी मत दो। मैं तो तुम्हारा बेहद का बाप हूं ना, बाप तुमसे ये पैसा कैसे लेंगे? पढ़ाने और योग सिखलाने के लिए पैसा लेंगे क्या? मैं पैसों का क्या करूंगा? मुझे अपने लिए तो महल आदि बनाने नहीं है। ये जो मकान आदि बनाते हैं ये भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं, विनाश के टाइम पर बच्चे आबू में आवेंगे, इकट्ठे होंगे। मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए आता हूं। शिव बाबा पढ़ाते हैं और वो पढ़ाई आने वाला है निराकार, जो सदैव वानप्रस्थ में ही रहते हैं। उनको मकान आदि कुछ है ही नहीं, मकानों में तो तुम बैठे हो पढ़ने के लिए, फिर तुम आवेंगे नई दुनिया में। बाप कहते हैं तुम तो हमारे बच्चे हो ना, क्या जो बाप के बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी, और जो दूसरे धर्म के बाप के बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? है एक पक्की पक्की निशानी बता दी, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनकी भी निशानी है, और जो बाप के बच्चे हैं कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, कभी दूसरे धर्म के बाप को बाप नहीं बनाते, उनकी भी निशानी है। बुद्धि में आ रहा है?
एक छुपा
नहीं, जो बाप के बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में सदैव रहेगा मांगने से मरना भला, बाप की बदनामी कराए देंगे। तुमको कोई से भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि तुम किसके बच्चे हो?
हैं?
बाबा के बच्चे हो, जो विश्व का मालिक बनाने वाला है। तुम सिर्फ बाप से ही मांगते हो क्या? अगर मांगते भी हो तो किससे? सिर्फ बाप से मांगते हो, उनका तो फर्ज है कि डोले लाल का कुआं भरपूर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकींदे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ जी
बाबा, बेसिक में जाकर फर्स्ट माँ का नाम सुनना करता बोल रहे हैं ना, माँ का है भगवान, माँ नहीं ना अगर
कोई बात नहीं, अम्मा से सुनने वाले तो हैं। अम्मा की बच्चियाँ हैं कि नहीं?
अम्मा के बच्चे है
नहीं? अम्मा के बच्चे ज्यादा नजदीक होते हैं या बच्चियाँ ज्यादा नजदीक होती हैं?
बच्चे।
अम्मा के बच्चे भी होते हैं और अम्मा की बच्चियां भी होती हैं। बाबा ने ज्ञान सुनाने के लिए प्रेफरेंस किसको दिया है? हैं? अम्मा तो मर गई, ऐसे कहना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए? शरीर छोड़ दिया है तो शरीर छोड़ दिया तो अब अम्मा नहीं रही तो किससे सुने? हैं? बाप से सुने। बाप से सुनेंगे तो बाप तो पुरुष है, दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है या कन्या माताओं की लिस्ट में है? सब पुरुषों के लिए बताया कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है या एक को छोड़ करके सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, ऐसे बोला? क्या बोला? सब हैं दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन के मुख से सुनना अच्छा है पहले पहले, या फाउंडेशन अच्छा डालना चाहिए? अच्छा डालना चाहिए। तो ब्रह्मा तो आप कह रहे हैं चला गया,
चला गया
तो किससे सुने?
ब्रह्मा कुमारी से सुना।
हाँ, ब्रह्मा कुमारियों में भी सब जो हैं वो दूसरे दूसरे धर्म की जड़ें नहीं हैं। ब्रह्मा कुमारियों में भी कोई ऐसी ब्रह्मा कुमारी होगी जो असल देवी देवता सनातन धर्म की आधारभूत होगी। तो सुनने में कोई हर्जा है क्या? है? अगर श्रेष्ठ आत्मा से सुनेंगे तो श्रेष्ठ पद बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा।
कैसे समझाना बाबा?
हैं?
श्रेष्ठ आत्मा का कैसे समझाना उनको?
किनको समझाना?
ब्रह्म कुमारी अंदर
तुम समझाओगे जाके? अरे तुमने समझने की बात कही या समझाने की बात कही?
बाबा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन।
फर्स्ट बेस्ट नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव जो पड़ता है जिसका, उसी का लास्ट प्रभाव तक पड़ता रहता है अंत तक। इसका मतलब ये है कि जिसने हमको ज्ञान दिया, चाहे बेसिक नॉलेज दी और उसके बाद समझो किसी ने एडवांस नॉलेज दी, तो ज्यादा प्रभावित हम किससे हो गए? बेसिक नॉलेज देने वाले से ज्यादा प्रभावित हुए या आखिरी ने एडवांस नॉलेज देने वाले से ज्यादा प्रभावित हुए? हैं एडवांस देने वाले से प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के हम ज्ञान में चल पड़े तो आखिर तक आखिरी तक ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? बेसिक देने वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा या एडवांस देने वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा? अगर एडवांस देने वाला जिंदा बना रहे तो किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा? एडवांस देने वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो फर्स्ट इम्प्रेशन हुआ ना, फर्स्ट इम्प्रेशन वो ही लास्ट इम्प्रेशन, लास्ट तक वो प्रभावित करती रहेगी आत्मा। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। भगवान भी है और भगवान का परिचय देने वाला भी खड़ा है तो ज्यादा मान्यता भक्ति मार्ग में देते हैं गुरु को, ज्ञान मार्ग में नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो कहते हैं जब भगवान बाप को पहचान लिया तो बड़े से बड़ा गुरु मिल गया, देहधारी गुरु के पीछे क्यों पड़े?
बाबा सन्यासी और माताओं के पास जाकर भवती भिक्षा देवी माता नपुंसकी ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं?
अच्छा ये बात बताओ कि सन्यासियों की संख्या, तो प्रकांड विद्वान सन्यासी होते हैं ना, तो बड़े बड़े सन्यासी उत्तर भारत में ज्यादा हैं विद्वान पंडित आचार्य या दक्षिण भारत में ज्यादा हैं? क्यों? दक्षिण भारत में भी तो हैं लेकिन ज्यादा सन्यासी कहां से निकलते हैं? हैं? ज्यादा सन्यासी कहां के प्रसिद्ध हैं, उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के? उत्तर भारत के बहुत प्रकांड विद्वान होते हैं, शास्त्रों के बड़े धुरंधर होते हैं, उत्तर भारत में ही क्यों ज्यादा प्रसिद्धि है सन्यासियों की? ज्यादा मान्यता उत्तर भारत में है सन्यासियों की, दक्षिण भारत वाले इतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों? कारण क्या है? अरे जिन्होंने महाभारत देखना शुरू कर दिया होगा वो तो अच्छी तरह जानते होंगे
वहां पर सेवा भक्ति ज्यादा
है,
वहां पर सेवा भक्ति ज्यादा
है। वो तो है, वो तो बात अभी बता दी ना कि सन्यासियों की पद पूजन, पांव पूजन, पांव धोकर पीना वगैरह सब उत्तर भारत में ज्यादा करते हैं, दक्षिण भारत में उतना नहीं करते। तो कारण क्या है इसका? हाँ, सन्यासियों में शास्त्रों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। तो गंगा उनकी अम्मा थी क्या? तो सन्यासियों की अम्मा कौन है? है जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहाँ जाकर बैठते हैं? अम्मा की गोद में जाके बैठ जाएंगे, दूसरों की गोद में नहीं जाएंगे, कहाँ बैठेंगे जाके? अम्मा की गोद। तो गंगा जी के किनारे चौकड़ी मार के कौन बैठे रहते हैं? सन्यासी लोग बैठे रहते हैं। आपके प्रश्न का समाधान हुआ क्या? आपने क्या प्रश्न पूछा?
सन्यासी माताओं के पास जाकर भौतिक विश्राम लेंगे।
जो सन्यासी हैं उत्तर भारत के, जब गंगा निकलेगी तो वो सन्यासी भी निकलेंगे, उससे जाके भीख मांगेंगे ज्ञान की। क्या?
ज्ञान की भीख।
हाँ, क्योंकि पवित्र है ना जन्म जन्मांतर की पवित्रता के संस्कार तो है ना, तो राम वाली आत्मा के सामने नहीं झुकने वाले हैं क्या? किसके सामने झुकेंगे? जब गंगा माता निकलेगी तो उत्तर भारत के सन्यासी भी झुक जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। तो माताएं बहुत भाग्यशाली हैं और माताओं में भी जो गंगा माताएं हैं
तो कितनी भाग्यशाली है, सर पे जाके चढ़ के बैठती है, है? पार्वती माता फिर भी गोदी में बैठेगी भगवान की, और गंगा माता एकदम सर पे जाके बैठेगी। जगदम्बा के साथ तो जगत पिता दिखाते ही नहीं है, ऐसे नहीं जगदम्बा के कोई विधवा है, है तो उसका भी पति है जगत पिता, लेकिन साथ साथ नहीं दिखाते। तो माताएं तो हैं, लेकिन गंगा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, जिसकी सेवा कोई ने नहीं कर पाई उसकी सेवा गंगा माता करती है। सन्यासियों को न कोई ब्रह्मा कुमारियां आज तक कन्विंस कर पाई, न कोई एडवांस पार्टी वाले कन्विंस कर पाए, कोई निकले सन्यासी? कोई नहीं। लेकिन गंगा जब निकलेगी तो सन्यासी झुक जाएंगे। माना कि रुद्रमाला में भले गंगा का नंबर है, लेकिन कन्याओं माताओं के बीच ज्यादा ज्ञान और ज्यादा प्योरिटी किसमें? गंगा में। प्योरिटी ही झुकाती है, ज्यादा ज्ञान क्यों? झुकाने वाला ज्ञान गंगा में ही क्यों, और दूसरी एडवांस की ब्रह्मा कुमारियों में क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। संक्षेत्र में जब एडवांस ज्ञान निकला और 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ, तो सबसे पहले उस एडवांस ज्ञान को, सतोपधान ज्ञान को सबसे पहले किस कन्या ने सुना? और बहुत लंबे समय तक सुना। शुरू शुरुआत में इतना ज्ञान का पक्का फाउंडेशन और कोई कन्या ने नहीं डाला, जगदम्बा ने भी नहीं सुना, क्योंकि जगदम्बा तो उस समय 9 साल की बच्ची थी और गंगा तो समझदार थी। तो ज्यादा ज्ञान सतोप्रधान पीरियड का किसकी बुद्धि में बैठेगा? गंगा की बुद्धि में बैठता है। लेकिन संस्कार गंगा में वो ही सन्यासियों के हैं। सन्यासियों के साथ रहते रहते बच्चों का भी मां के ऊपर असर पड़ता है कि नहीं? है तो गंगा प्रवृत्ति मार्ग की, किसकी धरणी है? अरे गंगा धरणी किसकी है? गंगा का पति कौन है? अरे कोई दूसरा कोई पति है? कभी सुना नहीं? गंगा को धारण करने वाला गंगाधर एक ही है। क्यों गंगाधर?
बाबा ब्रह्मा बाबा की बड़ी सगी बहन छोटी माँ भी अर्थात वैष्णवी माँ, और प्रजापिता की बड़ी पत्नी माना पहली पत्नी और दूसरी छोटी पत्नी जगदम्बा हो गई।
अरे जो छोटा पद पाए वो छोटी पत्नी, ज्ञान में जो ज्ञान में बड़ा तो बड़ा और ज्ञान में छोटा तो छोटा, तो दोनों माताओं में बड़ी माता कौन हुई और छोटी माता कौन हुई? हैं? बड़ी माता, छोटी मम्मी जो लक्ष्मी बनेगी वो बड़ी माँ हो गई, क्योंकि ज्ञान को सुनने के साथ साथ, सुनाने के साथ साथ धारण भी किया। तो ज्ञान को धारण करने वाला बड़ा हुआ या सिर्फ सुनने सुनाने वाला बड़ा हुआ? धारण करने वाला बड़ा हो गया। तो ज्ञान के आधार पर तो वो बड़ी माँ हो गई, लेकिन जो अज्ञानी बच्चे हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, दूसरे दूसरे धर्मों की जो पैदाइश है जगत में, वो कौन सी माता से? जगत माता से है या भारत माता से? जगत माता से है। वो संग के रंग में ला करके जगत माता की बुद्धि खराब कर देते। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में दो तरह की माताओं का गायन है। कहते हैं कंपिल में राजा उत्तानपाद का राज्य था, उनके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। षष्ठी के आदिकाल की बात बताई। सुरुचि माने अपनी रुचि पूर्वक चलना। श्रीमत किसकी है, श्रीमत कौन देता है, इस पर ज्यादा गहराई से विचार नहीं करना। शिवो हम, जो हमारी रुचि में आता है बस वो ही श्रीमत है। तो वो हो गई सुरुचि। शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर है, या ऐसे ही नाम दे दिए काम के आधार पर, वो रुचि पूर्वक चलने वाली। और दूसरी माता का नाम था सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने नीति नियम। जो ईश्वरी है, परिवार के नीति नियम है, उनके अनुकूल अपने जीवन को बिताने वाली वो सुनीति थी। हाँ, जिसका बच्चा ध्रुव हुआ, ध्रुव पद पाने वाला। तो दो माताएं शास्त्रों में भी दिखाई है, दूसरे तरीके से भी दिखाया है। कहते हैं कश्यप ऋषि हुए, उनसे षष्ठी पैदा हुई। षष्ठी की शुरुआत किससे हुई? कश्यप, कश्यप गोत्र भी कहते हैं। तो कश्यप ऋषि की भी दो पत्नियां थी, एक दिति बड़ी माता और एक छोटी माता आदिति। दिति बड़ी माता से दैत्य पैदा हुए पहले। क्या? बड़ी माता से पहले कौन पैदा हुए? दैत्य पैदा हुए, और बाद में अदिति से अद्वैत। अद्वैत कौन? देवताएं पैदा हुए। अद्वैत क्यों कहा गया देवताओं को? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उनको अद्वैत कहा गया।
तो ब्रह्मा बाबा ने छोटी माता जगदम्बा को साक्षात्कार सुनाया था। वैष्णवी माता को ये बात क्लियर से समझ में नहीं आया कि कौन प्रजापिता की पहली पत्नी ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन है। क्या प्रजापिता की छोटी पत्नी जगदम्बा है क्या?
अभी तक समझ में नहीं आया है? इसको कहते हैं भाषा का फेर। क्या? अगर हिंदी भाषा नहीं आती है तो कितना भी विस्तार में समझाओ, लेकिन बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी इतना लंबा समझाया, अभी पता ही नहीं चला कि प्रजापिता की भागीदार की पहली पत्नी कौन सी थी, छोटी मां या बड़ी मां। अरे कलकत्ते में दूसरी मां बाद में बनाई जाती है या पहले ही बनाई जाती है?
बाद में बनाई जाती।
एक को कहते हैं धर्म पत्नी, शादीशुदा को धर्म पत्नी कहते हैं, या जो दूसरी पत्नी बनाई जाती है उसको धर्म पत्नी कहते हैं? शादीशुदा जो बनाई जाती है उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी कौन सी माता को दी थी पालना करने के लिए। छोटी मम्मी को दी थी, छोटी मां को दी थी, या बड़ी मां को दी थी? हैं? कौन सी माता को पालना करने के लिए दी थी? हाँ, छोटी मां को दी थी।
वाले बड़े लोग उनको
ये तो ज्ञान में होता ही है। बाबा आता है तो बाप को बच्चा, बच्चे को बाप बना देता है, माता को पिता, पिता को माता बना देता है, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बना देता है। ब्रह्मा बाबा पुरुष थे या स्त्री थे? पुरुष थे, फिर क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। वो आरी दाढ़ी मूछ वाली स्त्री
बड़ी लंबी हो गई
है। अभी नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया है? है ज्ञान गोल गोल है, सृष्टि गोल गोल है, शिव बाबा गोल गोल है, है? गोल गोल कहने वालों की बुद्धि तो नहीं गोल है। हैं?
बड़े माँ, बड़े माँ बोलते गीता माता को समझ रहे
हैं?
बड़े माँ को गीता माता को समझ रहे, वो छोटी, वो झूठी गीता।
जो बड़ा काम करे सो ज्ञान के आधार पर बड़ी माँ, और काम छोटा कर दे तो छोटी माँ हो जाए।
जन्म देगा
ना। बोलो बोलो बोलो
बाबा।
दुर्गा माता की अब पर्चियां लिख करके नहीं देती आजकल है? दुर्गा माता
धाम देनु को पंख क्यों दिखाते
हैं?
धाम देनु को पंख क्यों दिखाते
हैं? कामधेन को पंख क्यों दिखाते हैं? ज्ञान योग के पंख होंगे जिनसे उड़ती रहती होगी। कामधेनु सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली, वो ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहती होगी। ये पंख कटे हुए होंगे हैं? पंखों से उड़ती है, इसलिए कामधेनु गैया जो देवताओं की अम्मा बताई जाती है। क्या जितने भी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताएं किसके शरीर में दिखाते हैं? कामधेनु गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं। तो वो कामधेनु गैया कोई जानवर थी या कोई ह्यूमन मनुष्य थी? मनुष्य रूप में गैया का उसको वो शेप दे दिया है। माने गाय थी नहीं, मुखड़ा तो स्त्री का दिखाते हैं या गाय का मुखड़ा दिखाते हैं? हैं? स्त्री का मुखड़ा दिखाते हैं, बाकी शरीर गाय का, जानवर का दिखा दिया। तो क्यों दिखा दिया? शरीर से जानवरों जैसे कुछ काम कर दिए होंगे। जानवरों की कोई अम्मा, कोई बाप, कोई बच्चा, कोई भैया, कोई होता है? हैं? नहीं होता, तो उनको जानवर कहा जाता है।
बाबा टोकरे का करके तागुर बनना अच्छा है क्या? बाबा
क्या बोला?
ठोकर
खा के ठाकुर बनना अच्छा, या कोई हमें बता दे सच्ची सच्ची बात, उस आधार पर चल पड़ना और ठाकुर बन जाना अच्छा? क्या दो तरह हैं ऊंच पद पाने के, सुधरने के? एक तो शिव बाबा जैसे बताते हैं वैसे हम अपने जीवन में चल पड़े हैं, कोई ठोकर खाने की दरकार नहीं है। और एक है शिव बाबा जैसे बताते हैं उस पर विश्वास नहीं किया, और दुनिया वालों ने जैसे जैसे बताया, गुरुओं ने जैसे जैसे बताया वैसे चल पड़े, तो हो गया ठोकरें खाना। दर दर की, दर कहते हैं दरवाजा, इस दरवाजे पर गए भीख मांगी, क्या करें? उन्होंने वो रास्ता बता दिया, इधर से ऐसे चलो। दूसरे दरवाजे पर गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे चलो। तो दर दर ठोकरें खाना, और ठोकरें खा खा के जब अनुभवी बन जाएं, तब बड़ा ऊंचा पद पा लें, ठोकरें खा खा के। तो वो बढ़िया बात, या शिव बाबा पहले से ही मिला हुआ है उसी को पकड़ लिया जाए, और शिव बाबा जैसे चलाए वैसे ही चलता रहे, औरों के पास औरों के दर पर ठोकने की खाने खाने की दरकार ही नहीं, औरों के दरवाजे क्यों खटखटाए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो कौन सा बड़ा बनना अच्छा। और ठोकरें खाने वाला वास्तव में बड़ा बनेगा या बिना ठोकरें खा के श्रीमत पे चलता रहे जिंदगी में वो बड़ा बनेगा, श्रीमत चलने वाला ठोकरें भी नहीं खाएगा और बड़ा भी बन जाएगा, और शूटिंग भी अच्छी होगी, क्या ठोकरें खाता रहेगा संगम युग में तो वहां 63 जन्म भी क्या खानी पड़ेंगी, वहां भी ठोकरें खानी पड़ती हैं, शूटिंग हो जाती है ठोकरें खाने की।
रामायण में बताते हैं तो राम सेतु मानो वारदीप बनाते समय वो पत्थर को राम ने स्वयं ही अपने हाथों से डाला पानी में, लेकिन वो डूबे, उसके ऊपर राम नाम लिख करके जो वानर है वो डाला तो वो तैरने लगी।
क्या
तो रहस्य
नाम जो है किस बात की निशानी है,
काम।
माने कोई है जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया ऐसे बंदर, क्या कैसे बंदर प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, उनका नाम क्या था कोई को पता नहीं, नल और नील, क्या नल और नील, जैसे पानी आता है ना नल में से तो हो गया नल, ढेर सारा पानी आता रहता है हो गया नल, और एक है नील, नील माने नीला रंग, वो पानी विषैला होता है या साफ पानी होता है, नीला पानी कैसा कहेंगे हैं, विषैला कहेंगे। तो दो आत्माएं हैं जो पहले अधूरे बंदर होते हैं, बाद में संपन्न स्टेज मिल जाती है उनको, राम और कृष्ण, जब संपन्न स्टेज बनती है तो उनके द्वारा जो भी पत्थर बुद्धि आत्मा ज्ञान में तैराई जाती है संपन्न स्टेज पर, वो पारसनाथ का काम करते हैं, पारस पत्थर को जो कोई छुएगा तो क्या हो जाएगा, सोना बन जाता है। तो ऐसे ही रामकृष्ण भी वाली आत्माएं जब संपन्न स्टेज को धारण करती हैं तो उनका नाम पड़ गया नल और नील, उनके द्वारा जो पत्थर तैराए गए उनसे राम सेतु बन गया, ज्ञान का पूरा पुल ही बन गया, सब पार हो गए। बाकी उन्होंने स्थूल राम सेतु बना दिया पत्थरों का, वो पत्थरों की तो बात ही नहीं, ज्ञान जल में स्थूल पत्थर तैरेंगे या ज्ञानी तो आत्मा रूपी जो पहले पत्थर बुद्धि थे वो तैरेंगे, जो पहले पत्थर बुद्धि थे वो तैरेंगे। पत्थरों में भी किस्म होती है, किस्म किस्म के पत्थर होते हैं, कोई तो पत्थर ऐसे होते हैं पानी में डालो फट डूब जाए, कोई पत्थर ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं डूबते, ऊपर ऊपर धीरे 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 हल्के होते हैं, पुराना पत्थर हल्का होगा छेदों वाला होगा या एकदम नया पहाड़ का पत्थर हल्का होगा हैं? अरे पत्थरों में जो किस्म होती है, एक तो होते हैं छेद 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 छेद, वो पत्थर पुराने होते हैं कि नए होते हैं, वो पत्थर पुराने होते हैं, तो रामकृष्ण वाली आत्माएं पुरानी है नई है, पुराने पत्थर हैं। विषय सागर में जल्दी डूबते नहीं है। और
माधुरी का पाठ किसका है, है? माधुरी का पाठ
एक का नाम था, बड़ी का नाम क्या था, है कुंती, और छोटी का नाम क्या था? मात्री। बड़ी से कौन से पांडव की पैदाइश हुई है? धर्मराज युधिष्ठिर है। कौन सी आत्मा है धर्मराज युधिष्ठिर है? मर जाए मगर बोलता रहे, क्या देहम वा पातया में कार्यम वा साधया में, देह भले खत्म हो जाए तो भी काम पूरा करके छोड़ेगी ब्रह्म राक्षस बन के। कौन है? ब्रह्मा बाबा। किसका पुत्र है? है? अरे बड़ी रानी का पुत्र है या छोटी रानी का? कौन है बड़ी रानी? ले अभी भी जगदम्बा बड़ी रानी। अरे ज्ञानियों की भाषा में बोल रही हो कि अज्ञानियों की भाषा में बोल रही हो? है ज्ञान की दृष्टि से कौन सी बड़ी माँ है? वैष्णो देवी। वो ही कुंती, उसका पहला पुत्र हुआ धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरा पुत्र भीम, भयंकर बहुत खाता था। क्या स्थूल भोजन की बात है, है? या बेहद के भोजन की बात है? है, पेट बहुत बड़ा था, उसका नाम क्या दिया है? बड़े पेट वाले का ब्रकोदर है। ब्रक माने भेड़िया, जैसे जंगल में भेड़िया होते हैं ना, शेर तो थोड़ा मांस खाता है ताजा ताजा, और भेड़िए जानवर जो मर जाते हैं ना, इधर मरे उधर मरे उधर मरे, चारों तरफ जाकर के मरा हुआ मांस, दो चार दिन का पुराना सड़ा सड़ाया मांस, वो भी सारा खा जाएगा। क्या ऐसा कोई देवता है जो सब तरह के फूल खा जाता है? हाँ? सब चुप। अरे कोई तो बता दो, हाँ? पता ही नहीं, ऐसे देवता का नाम ही पता नहीं है जो सब तरह की फूल खा जाता है। शंकर जी श्रावण के महीने में गुलाब के फूलों की भी ढेर की ढेर प्रदर्शनी सजाई जाती है, और वैसे लंबे छेद वाले जो धतूरे के फूल हैं वो भी चढ़ाए दिए जाते हैं। बदबू वाले होते हैं या खुशबू वाले होते हैं? बदबू वाले। ऐसे फूलों को भी खा जाता है। तो वो ब्रकोदर कौन हुआ? भीम कौन हुआ? कौन सी आत्मा हुई?
रामबाप।
वही प्रजापिता का पाठ बजाता है। तो तीन बच्चे पैदा हुए कुंती से, एक रथवाला, क्या यज्ञ के आदि में रथ होता है, भागीदार था तब रथ था, या दूसरे जन्म में रथवान बनता है? शिव बाप बाप के रूप में कौन सा रथ लेता है और प्रत्यक्ष होता है पाप के रूप में दूसरे जन्म में? तो अर्जुन हो गया पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, जिसका धनुष पुरुषार्थ रूपी धनुष बहुत प्रसिद्ध है गांडीव। तो तीन पुत्र हुए कुंती को। कुंती समझ में आई कौन है? तो मात्री समझ में आई गई होगी, हैं? मात्री का मतलब ही है मंद रही बुद्धि जिसकी, बुद्धि इतनी चलाई नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, थोड़ा मंद बुद्धि रही, तो नाम क्या पड़ गया? माद्री। उसे कौन से पुत्र पैदा हुए? हैं? नकुल, न इस कुल के न उस कुल के, वो कौन है? देवताएं तो देवता कुल के होते हैं, और जो विदेशी हैं इस्लामी क्रिश्चियन आदि वो देवता बनते हैं क्या? नहीं। तो वो ऐसे हैं जो ना इस कुल के पक्के ना उस कुल के पक्के, विदेशी भी पक्के नहीं और स्वदेशी भी पक्के नहीं, वो सन्यासी। शुरुआत में पक्के भारतवासी बन के दिखाते हैं और कलयुग के अंत में हवाई जहाज में सैर करते रहते हैं, बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाते हैं, जितने बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां गृहस्थियों को भी नहीं होते, बड़ी लंबी चौड़ी गृहस्थी दिखा देते हैं अपनी सन्यासियों की। ये हमारे फॉलोअर बच्चे हैं, लेकिन पक्के विदेशी बन जाते हैं कि स्वदेशी? पक्के विदेशी बन जाते हैं। तो न स्कूल के पक्के न स्कूल के पक्के, उनका नाम पड़ गया नकुल। बड़ा बच्चा माद्री का नकुल और छोटा बच्चा सहदेव। किसके किसके किसका सहयोग करते हैं है? अरे इस्लामी और क्रिश्चियंस का सहयोग नहीं करते,
का सम्मान बता
देना नहीं। जो सिख धर्म के होते हैं वो किसका सहयोग करते हैं? देवताओं का सहयोग करते हैं, हिंदू धर्म वालों का सहयोग करते हैं, कभी भी क्रिश्चियन और मुसलमानों का सहयोग नहीं करते हैं। उनसे तो हमेशा वो बैर रहता है जैसे, और घबराते हैं इस्लामी और क्रिश्चियंस उनसे। तो वो हो गया सहदेव। ये कैटेगरी है पांचों पांडवों की, ये राइटियस हैं या लेफ्टिस्ट डालियों वाले हैं? राइटियस हैं पांचों के पांचों। किसने पूछा था? माद्री। माद्री कौन है? अरे हाथ तो उठा दो। हाँ चलो, बुद्धि तो चलती है माद्री की तरफ।
बाबा कहीं कहीं पानी में थोड़ा विष पड़ते ना, वो आते क्या बाबा?
क्या
कहीं कहीं पानी में विष पड़ते ना, वो आते क्या?
पानी विषैला हो जाता है, कहीं कहीं पानी विषैला निकल रहा है। पहले नहीं था ऐसा, और अभी अभी विषैला पानी निकलता है जमीन के अंदर से भी। कैसा निकलता है? विषैला पानी निकलता है। तो ये तो मालूम है, पहले नदियां स्वच्छ होती थी या उनमें गंदे नाले पड़ते थे? स्वच्छ नदियां थी पृथ्वी पर, जो भी नदियां बहती थी स्वच्छ जल की नदियां बहती थी, उनमें गंदे नाले नहीं गिरते थे। तो नदियों का पानी जो जमीन में सूख करके जाता था वो पानी शुद्ध रहता था या अशुद्ध होता था? कुएं का पानी भी कैसा निकलता था? शुद्ध पानी निकलता था। और अभी बाद में क्या होता है? बाद में बड़े बड़े कल कारखाने बनते हैं, उन कारखानों का और जो पूरे बड़े बड़े शहर महानगर बनते हैं, उन शहरों का गंदा कचरा लैट्रिन वगैरह बड़े बड़े क्या बनाते हैं? होल, मैन होल बनाते हैं ना। उन मैन होलों के जरिए सारा का सारा वो पानी कहाँ जाता है? हैं? बड़े बड़े नालों के जरिए नदी में ही गिरता है जाके। तो नदियों का सारा पानी कहाँ जाता है? सूख करके जमीन के अंदर जाता है। तो आज पानी कैसा होता जा रहा है? विषैला होता जा रहा है। सभी शहरों में ये मुसीबत है। ये तो हद की बात हुई है? ऐसे ही बेहद की बात समझ लो। बेहद में ज्ञान नदियां हैं या नहीं है? है। फिर पहले तो शुद्ध होती है, जब सागर से निकलती है सागर से कनेक्शन होता है, बाद में सागर से टूट जाती है, है? दुनियादारी वालों के चक्कर में आ जाती है, सागर से दूर हो गई तो दुनिया वाले उनमें विष डालेंगे या अमोघ वीर्य का संबंध रहता है, विषय विकार उनके पेट के अंदर पहुंच जाता है, तो बुद्धि कैसी बन जाती है? सारी बुद्धि विषैली बन जाती है, विषैला ज्ञान जल निकलता है। धरणी में से क्या निकलता है? विषैला ज्ञान जल निकलता है। फरक्काबाद का भी पानी कैसा हो गया है? अरे गंगा नदी बड़ी पवित्र मानी जाती है, लेकिन सबसे पहले से पहले पहला नाला कौन सा गिरता है गंगा नदी में हिस्ट्री में है? फरक्काबाद में पहला गंदा नाला गिरता है। गंगा नदी बह रही है पुराने समय से, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में गंगा यमुना होती नहीं है। होती है कि नहीं? होती तो है, लेकिन उनका ज्ञान जल शुद्ध होता है, है? लेकिन फिर क्या होता है बाद में कलयुग अंत में? बड़े बड़े शहरों का कचरा गिरता है। वो फरक्काबाद बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन पुराना है कि नहीं? पुराना शहर है। तो जब से वो मुसलमान बादशाह ने स्थापन किया, क्या नाम क्या पड़ गया उसका? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने जो फरक्काबाद बसाया, तभी से वो मुसलमानों की नगरी, उसमें आधे मुसलमान अभी भी रहते हैं। वो कचरा पड़ा, और गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई। वो जमीन में जो पानी निकल रहा है बहुत विषैला पानी है।
बाबा कंपिल में बहुत
मिलकर रहते
है ना पानी?
अरे कंपिल की तो बात, राजा उत्तानपाद की नगरी है, कपिल मुनि की नगरी है, है? और
दिल्ली में ड्रिंकिंग पानी
है? दिल्ली में सात नाले गिर रहे हैं, बड़े बड़े सात नाले यमुना में जाके गिरते हैं। इतने नाले और किसी शहर में नहीं गिरते। तो यमुना का पानी गंदला होगा या स्वच्छ होगा? गंदला हो गया। टाइम हो गया।